તારીખ 23/5/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 705 અને 706 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 325
ભાદરવા સુધી 11 છે વડવાથી લખેલો પત્ર છે વડવામાં ખંભાત પાસે અત્યારે ત્યાં આશ્રમ છે પર્યુષણ પછીનો પત્ર છે એટલે ક્ષમાપનાનો પત્ર લખેલો આજ દિન પર્યંત ઈશ આત્મા છે મન વચન ઓર કાયા કે યોગ છે આપ સંબંધી જો કુછ અવિનય અસાધના યા અપરાધ હુઆ હો ઉસકી શુદ્ધ અંતકરણ સે નમ્રતા ભાવ સે મસ્તક ઝુકા કર દોનો હાથ જોડ કર ક્ષમા માંગ જ્ઞાની પુરુષ હોતે હુએ ભી મુમુક્ષુઓ કે પ્રતિ કિતની નમ્રતા પ્રદર્શિત કરતે હૈ એક મુમુક્ષુ દુસરે મુમુક્ષુ કે પ્રતિ ઇતની નમ્રતા નહીં પ્રદર્શિત કર સકતા ઉતના જ્ઞાની હો કરતે વો કરતે હૈ મન વચન કાયા રૂપ ત્રિયોગ છે આપ સંબંધી આપકે પ્રતિ મેને આપકે મન મેં કુછ ભી મેરે મન ઓર વચન ઓર કાયા કે કુછ પ્રવૃત્તિ છે કુછ નિમિત્ત છે કુછ અવિનય હુઆ હો મન દુઃખ હુઆ હો અવિનય હોને સે મન દુઃખ હોતા હૈ અસાધના હુઈ હો યાને નહીં કરને યોગ્ય કોઈ પ્રવૃત્તિ હો ગઈ હો કોઈ અપરાધ હુઆ હો યા મેરે સે કોઈ દોષ હુઆ હો ઉસકી શુદ્ધ અંતકરણ સે મેને મન મે કુછ ઓર બાત રખી હૈ એસા નહીં હૈ ક્ષમા યાચના તો એ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કે બાદ રૂઢિગત રૂપ સે ક્ષમા યાચના કી પ્રવૃત્તિ લોગ આપસ મે કરતે હૈ યહાં કહેતે કે શુદ્ધ અંતકરણ સે મેરે અંતકરણ મે દૂસરા કોઈ ભાવ નહીં હૈ ઓર નમ્રતા ભાવ સે ઉસમેં કોઈ મોટાઈ યા નમ્રતા કા ભી અભિમાન નહીં નમ્રતા ભાવ સે મેં નમ્રતા કા ભી અભિમાન નહીં બડાઈ કા તો મોટાઈ કા તો કોઈ અભિમાન નહીં નમ્રતા ભાવ સે મસ્તક ઝુકા કર મુમુક્ષુ કે પ્રતિ મસ્તક ઝુકાના ચાહીએ કે નહીં ઝુકાના ચાહીએ દેખીએ ક્યા બાત મસ્તક ઝુકા કર દોનો હાથ જોડ કર અને કોઈ કસર નહીં હૈ ઇસમેં કોઈ ક્ષમા યાચને મેં કોઈ કસર નહીં હૈ સહી બાત उसके जो भाव हैं वो बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित होते हैं सहजता निर्मानता मान उपमान की कोई कल्पना ज्ञानियों को नहीं होती मैं बड़ा हूँ ये छोटा है दूसरे से मैं आगे बढ़ गया हूँ मैं दूसरे से कहीं ऊंचा हूँ ऐसी कल्पना क्षमा मांगता हूँ आपके समीपवासी भाइयों से भी उसी प्रकार से क्षमा मांगता हूँ किसके प्रति है आपके समीपवासी भाइयों से भी पत्र में नाम ऐसा एक क्षमापना का पत्र है उसी दिन एक दूसरा पत्र लिखा है लिमड़ी ए केशवलाल पाए हैं इसके प्रति शुभेच्छा संपन्न आर्य केशवलाल के प्रति लिमड़ी लिमड़ी वडवाणी पहले आता है यहाँ से लिमड़ी सहजात्म स्वरूप से यथा योग्य प्राप्त हो। तीन पत्र प्राप्त हुए हैं केशवलाल भाई के तीन पत्र मिले हैं। कुछ भी वृत्ति रोकते हुए उसकी अपेक्षा विशेष अभिमान रहता है तथा तृष्णा के प्रवाह में चलते हुए बह जाते हैं और उसकी गति को रोकने के सामर्थ्य नहीं रहती इत्यादि विवरण तथा क्षमापना और कर्कटी राक्षसी के योगवासी से संबंधी प्रसंग की जगत का भ्रम दूर करने के लिए विशेषता लिखी यह सब विवरण पढ़ा है। क्या कहा तो केशवलाल भाई ने अपने परिणाम लिखे थे कि कुछ भी वृत्ति रोकते हुए कोई भी वृत्ति का मैं वृत्ति को रोकता हूँ विभाव परिणाम की वृत्ति को मैं रोकता हूँ तो जैसे कि आज उपवास करना है नहीं खाना है या एक वक्त खाना है या आज हरी नहीं खाना है कुछ भी वृत्ति को रोकते हैं तो वृत्ति के रोकने का जो कषाय मंद का परिणाम होता है उसकी अपेक्षा इसकी बराबरी में अभिमान का परिणाम विशेष हो जाता है कि मैंने आज उपवास कर लिया। क्या देखिए इसमें किस बात को ध्यान में लेने की चीज़ है कि जो अपना परिणाम का अवलोकन करता है उसको ही ऐसा पता चलता है कि मैं वृत्ति को रोकने का प्रयास करता हूँ कषाय मंद है इसलिए वृत्ति रोकने का भाव आता है वृत्ति को रोकता भी हूँ लेकिन इसका खुद का स्वयं का इतना सूक्ष्म अवलोकन है कि वृत्ति तो रुकती है दबती है लेकिन वृत्ति रोकने का जो अभिमान है वो इससे ज़्यादा हो जाता है इसमें अहंभाव होता है कि मैंने इतना किया। तो एक दोष मिटाने के वक्त दूसरा दोष कैसा पैदा हो जाता है किस तरह हो जाता है इतना इतना हम व्रत लेते हैं इतनी प्रतिज्ञा लेते हैं इतना प्रतिष्ठान करते हैं इतना वृत्ति का संयम करते हैं तो वृत्ति को तो रोकते हैं लेकिन इसकी अपेक्षा मैंने उसकी बराबरी में देखते हैं तो हमारा अभिमान तो ज़्यादा बढ़ता है। ये बात कब पता चलता है कि जब अपना परिणाम का अवलोकन करता है उसको ही पता चलता है वरना तो ऐसा ही लगता है कि हम तो ऐसा करता है हम तो व्रति है बहुत परिणाम को संयम में रखते हैं बस अभिमान कितना होता है वो पता नहीं चलता है। देखिए इसमें सूक्ष्मता क्या है परलक्षी ज्ञान में व्रतादि संयम होते हुए भी इसका अभिमान का पता नहीं चलता और स्वलक्षी ज्ञान होवे तो वृत्ति का संयम होते होते साथ में ही अभिमान हो जावे तो उसका पता चल जाता है। स्वलक्षी ज्ञान और परलक्षी ज्ञान में क्या अंतर है क्या भेद है तो धार्मिक क्रिया जो भी वृत्ति है उसको संयमित करना किसी भी प्रकार की वृत्ति को संयमित करना एक धार्मिक बात है कषाय की मंदता भी होती है परंतु परलक्षी ज्ञान में उस वक्त जो अभिमान होवे तो पता खुद को नहीं चले और स्वलक्षी ज्ञान होवे तो उसको पता चल जावे कि अरे मैंने ये धार्मिक प्रक्रिया में कषाय मंद किया लेकिन साथ साथ मेरा अहम भाव और अभिमान तो बड़ा अभिमान तो हुआ साथ में। तो ये जो अवगुण होता है धार्मिक क्रिया करते हुए भी जो अवगुण होता है उसका पता स्वलक्षी ज्ञान में आता है परलक्षी ज्ञान में उसी को मुमुक्षु की भूमिका में अंतर अवलोकन के वक्त कैसे परलक्ष मिटता है और कैसे स्वलक्ष होता है, यहाँ से निकलता है, केशवलाल भाई के अपने निवेदन से निकलता है। इसने इतना अपना सूक्ष्म अवलोकन करके ये बात लिखा है कि मैं वृत्ति को कुछ भी प्रकार से रोकता हूँ, लेकिन रोकते हुए उस वक्त रोकते हुए मैंने उसी वक्त क्या होता है कि उसकी अपेक्षा अभिमान विशेष हो जाता है, कषायमंद होता है और अभिमान ज्यादा हो जाता है, नुकसान ज्यादा हुआ। ऐसा एक तो ये अपना अभिमान का दोष का निवेदन किया, दूसरा कहते हैं व्यवहार थी, एक प्रकार का कषाय तीव्र होता है। जैसे कोई दान देता है तो लोभ कषायमंद होता है, और मैंने इतना दान दिया तो मान कषाय तीव्र होता है, ऐसा बनता है। कसाईना बे भाग ने बे प्रकारना परिणाम था, चारित्र ना परिणाम में बे प्रकारना बने, एक कसाई मन था, बीजो कसाई तीव्र था। कसाई ने तो स्थिति छे, योग्यता जो है वो तो कसाई वाली है ही, तो क्या है कि एक कसाई मंद हो जाता है, दूसरा कसाई तीव्र हो जाता है। उस पर नहीं, एक पर्याय क्या, वो तो समय समय के पर्याय तो वहाँ पकड़, स्थूल पर्याय पकड़ने में आती है, क्षण क्षण के, तो उधर ऐसा होता है। प्रैक्टिकली देख लेना, अपना परिणाम को देख लेना, होता है कि नहीं होता है अपना परिणाम। तो समय एक होवे या समयांतर होवे, इसका कोई यहाँ अभ्यास करने के कोई प्रयोजन नहीं है, और कोई ध्यान देने का कोई वहाँ प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो यह है कि जब हम कसाय मंद करते हैं या कोई भी धार्मिक क्रिया में हमें शामिल होते हैं, उस वक्त कहीं दूसरा नुकसान तो नहीं कर लेते ना, इसी कारण से हम कोई दूसरा कसाई तो नहीं कर लेते ना। फिर क्षण वही हो या दूसरे क्षण हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान तो नुकसान ही है। मालूम पड़ जाता है उसमें उसी एक समय में है या एक दूसरे समय में है, वो कोई प्रयोजन का विषय नहीं, इधर इसका कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन उतना है कि परलक्षी परिणमन होता स्वयं को पता नहीं चलता, वो तो अंधेरे में चलता है कि हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा काम किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। और स्वलक्षी परिणाम होए तो उसको पता चलता है, ऐसा कसाय मंद होता है, फिर भी अभिमान जो होता है उससे तो नुकसान ज़्यादा होता है। अहम भाव तो आ गया, बोले सूक्ष्म रूप से आया हो तो भी स्वलक्षी ज्ञान में वो पकड़ने में आता है, और लाभ से नुकसान ज़्यादा है वो भी समझ में आ जाता है। ये अवलोकन का यही फायदा है। एक तो मैं वृत्ति को रोकने के साथ अभिमान में आ जाता हूँ, ऐसा अपना दोष का निवेदन किया। दूसरा निवेदन ये किया कि तृष्णा के प्रवाह में चलते हुए बह जाते हैं, बहुत मेरे परिणाम में तृष्णा बहुत है। धंधा व्यापार करते होंगे और ये जो व्यावसायिक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है लेकिन सभी के परिणाम तृष्णा के एक सरीखे नहीं होते, किसी को तीव्र परिणाम होते हैं, किसी को मंद परिणाम भी होते हैं। इनके मंद होगा या तीव्र होगा वो तो ज्ञानी को मालूम है, लेकिन खुद को ज्यादा लगता है, ये भी एक अंतर अवलोकन का विशेष पहलू है कि दोष अल्प होवे तो भी दोष बड़ा दिखे। अपना दोष दूसरे संसारी जीवों से, दूसरों को भी तृष्णा होती है, लेकिन दूसरों से मेरी तृष्णा मंद है ऐसा नहीं वो देखते, वो तो ऐसा देखते कि मुझे तृष्णा होती है तो तीव्र होती है, और एक तृष्णा में मैं बह जाता हूँ, मैंने इसके प्रवाह में मैं इतना चल जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है। बाद में कभी विचार करता हूँ तो कितना भाव हो गया, तो कभी कभी पता चलता है कि मेरे में बहुत तृष्णा है। लेकिन बह जाता हूँ इसका अर्थ यही है कि प्रवाह में बह जाने से पता ही नहीं चलता कि क्या कितने परिणाम हो गया मेरा। प्रवाह में अपने गुजराती में तनाई जाए छे एम कहे छे, किसमें बहना बहना और तनाना होता है, वेग होवे इसमें, तीव्र वेग से जो परिणाम आता है, तीव्र रस से परिणाम आता है, तो उसमें बह जाना होता है। तो अपना दोष का निवेदन करते हैं कि मेरे में तृष्णा बहुत है, तीव्र रस से तृष्णा के परिणाम होते हैं, उस प्रवाह में चलते हुए मैं बह जाता हूँ और उसकी गति को रोकने की सामर्थ्य नहीं रहती। इतने तीव्र रस वाले परिणाम होते हैं कि मैं रोक नहीं सकता उसको। ये मारी इतनी कमजोर हालत है, इतनी मेरी खराब हालत है। मुझे कृपालु देव के सानिध्य में जो मुमुक्षु आए, उसमें बहुत से मुमुक्षु इतनी सरलता वाले थे कि वो अपने बार बार अपने दोष को निवेदन करते रहते थे। मैंने अभी वक्र परिणामी ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया वक्र परिणाम है। पंचम काल अभी बढ़ गया थोड़ा, पंचम काल का प्रभाव थोड़ा तेज हो गया ऐसा। हाँ, कनिष्ठ परिणाम वाले जीवों की बाहुल्यता देखने में आती है। वो भी अभ्यास करते हैं, अवलोकन करते हैं कि मुझे क्यों इस वक्त जागृति नहीं आई, तीव्र रस में मेरा बहना हो गया तो पता ही नहीं चला, मैं रोक नहीं सका, ऐसा तृष्णा के परिणाम की गति को मैं रोक नहीं पाया, हार गया, उसका खेद होता है। इत्यादि विवरण, इस प्रकार के विवरण जो आपके पत्र में थे वो पढ़ा है हमने, और दूसरी बात लिया है वो योग वाशिष्ठ का प्रकरण भी, कि उसमें एक कर्कटी राक्षसी का प्रकरण आता है और उसमें वो बहुत से प्रकार का दोष करती है। राक्षसनी होवे वो तो मतलब मलिन परिणाम तीव्र होवे वही राक्षसनी होती है, फिर इसके परिणाम बदलते हैं आगे जा करके, वो क्षमा मांगती है और फिर वो राक्षसीपना उसका छूट जाता है, ऐसा कोई प्रकरण आता है, लंबा चौड़ा प्रकरण है योग वाशिष्ठ में। तो उसकी संबंधी प्रसंग की और जगत का भ्रम उसको दूर करने के लिए विशेषता, उसको जगत का भ्रम दूर हो गया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत सारा जगत मिथ्या है, एक ब्रह्म ही सत्य है, वो बात सिद्धांतिक रूप से योग वाशिष्ठ में भी आती है। ये सब बात लिखी, ये सब विवरण पढ़ा है, अभी लिखने में विशेष उपयोग नहीं रह सकता। मेरे पत्र के उत्तर लिखने में मेरा उपयोग विशेष नहीं रह सकता, जिससे पत्र की पहुंच भी लिखने से रह जाती है। पहुंच लिखनी चाहिए, पत्र मिल गया है, उत्तर नहीं लिखता हूँ लेकिन पत्र पहुंचा है, क्योंकि पत्र के पहुंच नहीं लिखे तो सामने वाले को ऐसा लिखता है लगता है कि पत्र मिला हो, शायद नहीं मिला हो, पोस्ट में कोई गैरवल्ले गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ हो ऐसा। इसलिए पत्र की पहुंच लिखनी चाहिए, वो भी मैं लिखने में रह जाती है। संक्षेप में उन पत्रों का उत्तर निम्नलिखित से विचारणीय है। अभी पहुँच नहीं लिखी थी, आगे तीन पत्र आगे पहुँच नहीं लिखी थी, अभी तीनों पत्र का संक्षिप्त उत्तर में लिख रहा हूँ। उसमें पांच पैराग्राफ दिया है। एक पहली बात ये कि वृत्ति आदि का संयम अभिमान पूर्वक होता हो तो भी करना योग्य है। क्या इसमें संकेत है कि मुझे अभिमान होता है इसलिए मुझे वृत्ति का संयम ही नहीं करना, असंयम में चला जाना है, ये बात नहीं है। भले अभिमान आज होता है और अच्छी बात है कि तुम्हारा ध्यान है कि मुझे अभिमान होता है, तो ये अभिमान निकालने का कोई उपाय है, हो सकता है। लेकिन वृत्ति का संयम छोड़ देना, अभिमान होता है इसलिए, ऐसा नहीं करना है। वृत्ति आदि का संयम अभिमान पूर्वक होता हो तो भी करना योग्य है। यहाँ पर विशेषता इतनी है कि उस अभिमान के लिए निरंतर खेद रखना, ये अभिमान टालने का उपाय है। कि अरे जीव तू लाभ के कारण संयम रखता है और अभिमान करके अपने आप को नुकसान करता है, तो नुकसान का पहलू बंद करने, ये खाता बंद कर दे, तो उसका खेद होना चाहिए कि ऐसा क्यों होना चाहिए मुझे। उस अभिमान के लिए निरंतर खेद रखना, वैसा हो तो ऐसा, वैसा हो मैंने खेद निरंतर चलेगा तो क्रमशः वृत्ति आदि का संयम हो और तत्संबंधी अभिमान भी न्यूनतम होता जाए। तो संयम तो बराबर चालू रहेगा लेकिन अभिमान है वो न्यून, मैंने क्रमशः जो है वो मंद होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये इसका उपाय है। इसका उपाय ये नहीं है कि अभिमान होता है इसलिए वृत्ति का संयम हम छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्गदर्शन दे दिया कि ऐसा गुण करने के लिए, गुण करते वक्त मुझे दोष हो जाए तो क्या करें, क्योंकि दोष को तोड़ना, गुण को छोड़ना नहीं दोष को तोड़ना, ये मार्गदर्शन दिया। वृत्ति आदि का संयम अभिमान पूर्वक होता हो तो, वृत्ति आदि का संक्षेप, ठीक संक्षेप संयम एक अर्थ में है, वृत्ति ने संक्षेप करवो એટલે ઓછી કરવી, ઓછો કરવો કયો કે સંયમિત કરવો કયો, એક અર્થમાં દોનો શબ્દ પ્રયોગ હૈ, અલગ અલગ અર્થમાં પ્રયોગ હો સકતા હૈ લેકિન યહાં એક હી અર્થમાં પ્રયોગ હૈ। તો કરીબ કરીબ જો અનુવાદ હૈ હિન્દી ठीक किया है, क्यों ये तो इतना गुड और गहरा विषय नहीं है लेकिन कहीं कहीं तो गुड और गहरा विषय में भी अनुवाद अच्छा है। हिंदी अनुवाद होना चाहिए, इसमें प्रमाण में अच्छा है, क्योंकि वो तो काठियावाड़ी भाषा, साहित्य की भाषा गुजराती हो और हिंदी करना आसान है, लेकिन घरगत्तू भाषा गुजराती हो गए और इसका हिंदी करना इतना आसान नहीं है, मुकाबले में अच्छा किया है करने वाले। हाँ कई जगह देखा है इस बात को, अनुवाद को कई जगह देखा है, अच्छा किया। अनेक स्थलों पर विचारवान पुरुषों ने ऐसा कहा है कि ज्ञान होने पर काम क्रोध तृष्णा आदि भाव निर्मूल हो जाते हैं, यह सत्य है। अनेक स्थलों पर मैंने अनेक ग्रंथों में विचारवान पुरुषों ने ऐसा कहा है कि आत्मा को स्वरूप ज्ञान होने से या सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान होने से उसके काम क्रोध तृष्णा आदि जो विभाव परिणाम है वो निर्मूल हो जाते हैं, नाश हो जाता है, यह सत्य है। मैंने ये सब प्रकृति है, जगत में प्रकृति का कोई इलाज नहीं देखने में आता। जिसकी जो प्रकृति हो ऐसा बोला जाता है कि प्राण और प्रकृति साथ में जाएगी, मतलब ये आदमी मरेगा वहाँ तक इसकी प्रकृति में कोई सुधार होने वाला नहीं है। ये बहुत अभ्यास से ये फिर सूत्र हो गया है। ये अध्यात्म के प्रकरण में ये बात बिल्कुल सही नहीं रखे। एक ज्ञान ऐसी चीज है कि किसी भी जीव की कैसी भी प्रकृति हो उसको नाश कर सकता है। प्रकृति का इलाज जगत में नहीं है लेकिन यहाँ पर है। उतना ही नहीं, पात्रता वाले जीव का यही लक्षण है। जिस जीव को पात्रता हो इसका क्या लक्षण, बहुत से लक्षण है इसमें, एक ऐसा लक्षण भी है कि उसको ये पता चलता है कि मेरी प्रकृति ऐसी खराब थी लेकिन इस लाइन में प्रवेश करने से मेरी प्रकृति अभी ऐसी नहीं रही या बहुत फर्क पड़ गया। मैंने प्रकृति जो जीव के पूर्व संस्कारवश ऐसा तीव्र परिणाम वाले कषाय या विभाव होते हैं, वो पूर्व संस्कार पर ये ज्ञानाभ्यास यानी प्रकृति का दुश्मन जिसको कहते हैं ज्ञान को, उसके समीप जाने से, अभी तो मुमुक्षु तो अभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ लेकिन समीप गए, तो समीप जाने से फर्क पड़ गया प्रकृति, मैंने दुश्मन पर पहला घाव हो गया। प्रकृति का घाव आत्मा पर नहीं हुआ, आत्मा ने प्रकृति पर घाव किया, तो उसकी प्रकृति में फर्क पड़ जाता है, तो उनको खुद को पता चलता है। ये एक पात्रता का चिन्ह है। अगर कितना भी ज्ञानाभ्यास करे, शास्त्राभ्यास करे और प्रकृति वैसे के वैसे रह जावे तो ऐसा समझना चाहिए कि पात्रता नहीं है, इस बात की कोई असर नहीं आती है। इतनी प्रकृति जोर करती है कि ज्ञानाभ्यास का कोई असर विभाव के परिणाम पर नहीं आता, इतनी बलवान प्रकृति है। ऐसा है कि चारित्र गुण में दो बात है, एक चारित्र गुण से उत्पन्न होने वाला कषाय विभाव, चारित्र गुण का विभाव से उत्पन्न होने वाला कषाय, और एक कषाय रस। कषाय निर्मूल हुआ होगा तो जितनी वितरागता होगी उतना ही कषाय निर्मूल होगा, तो इस चतुर्थ गुण स्थान में पहली चौकड़ी जाती है, अनंतानुमंदी वाला जाएगा। पंचम गुण स्थान में दूसरी चौकड़ी जाएगी, छठे सातवें में तीसरी चौकड़ी का नाश होगा। ये तो जो सर्वज्ञ वितराग के ज्ञान में आया है इसमें ये जो मर्यादा है उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान वाला द्रविलिंगी भी हो सकता है, फिर भी उसको तीन कषाय मौजूद है, कषाय बहुत मंद हो गए। एकत्रित सागर की स्थिति में नौवीं ग्रह में जाने वाला मिथ्या दृष्टि हो गए द्रविलिंगी, तो भी उसको चारों कषाय पड़ा है, चारों चार चौकड़ी पड़ी है, अनंतानुमंदी प्रत्याख्यान वर्णी और प्रत्याख्यान वर्णी। तो इसमें तो तीव्र मंदता का कोई हिसाब नहीं है, सम्यक प्रकार से तो एक एक चौकड़ी का गुण स्थान अनुसार अभाव होता है। तो कषाय की जो चारित्र गुण की बात ले ले वे और अपना दोष का रक्षण करे, बचाव करे, तो जिसको स्वभाव या गुण की प्राप्ति करनी हो तो दोष का बचाव करके दोष को संरक्षण करे, ये बात बिल्कुल अपने ध्येय से विरुद्ध लाइन वाली है। सम्यक दृष्टि मैंने, स्वभाव दृष्टि मैंने, गुण दृष्टि, स्वभाव में तो गुण है, सब अनंत गुण का समूह है स्वभाव, तो गुण दृष्टि वाला कभी अपने दोष का बचाव नहीं करे, दूसरे का दोष का भी बचाव नहीं करे, ये सिद्धांतिक बात है। जिसको गुण प्राप्त करना हो जिसको सम्यक दर्शन प्रकट करना हो या जिसको मूल दृष्टि प्रकट हुई हो वो कभी अपना दोष का बचाव नहीं करेगा, कभी जिसने पर जितने पर मम जिसको पर जिसके पर ममत्व हो और जिसका पक्ष हो पक्षपात करके किसी दूसरे का भी दोष का बचाव नहीं करें। क्यों? कि इसमें सिद्धांत विपरीत हो जाता है। गुण प्राप्त करने का जो अपना सिद्धांत है वो सिद्धांत ही नुकसान हो जाता है। इसलिए जो अपने दोष का बचाव करता है या अपने वाले है ऐसा मानकर दूसरा का पक्षपात करके इसका दोष का जो बचाव करता है उसको दोष दृष्टि तीव्र हुई है, उसको गुण दृष्टि प्रकट होने की कोई परिस्थिति नहीं है, उसकी लाइन बिल्कुल उल्टी है। ऐसा कहा है कि ज्ञान होने पर काम क्रोध तृष्णा आदि प्रकृति जो है वो निर्मूल हो जाते हैं, यह सत्य है। क्योंकि सच्चा ज्ञान तो उसका अभाव करता ही, गुण स्थान अनुसार उसका अभाव होता ही जाता है। तथापि उन वचनों का ऐसा परमार्थ नहीं है कि ज्ञान होने से पहले वे मंद न पड़े या कम न हो। क्या कहेंगे बचाव करने वाले? हम तो ज्ञानी नहीं है, हमको तो अभी ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए हमारी प्रकृति कहाँ से चली जाएगी? जिसको ज्ञान हुआ हो उसको प्रकृति का नाश होता है, हमको तो ज्ञान हुआ नहीं, हमारी प्रकृति कहाँ से जाएगी? ऐसा परमार्थ नहीं लेना है। इसमें से भी परमार्थ लेना है कि ज्ञान होने से पहले वे मंद पड़ सकती है या कम हो सकती है, उसका रस ठंडा कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है या स्वभाव की प्राप्ति करनी है तो पहले इसका रस मंद पड़ता है। प्रकृति का रस मंद पड़ने से उसकी ताकत है वो टूट जाती है, उसकी शक्ति टूट जाने से उसका अभाव हो सकता है। जहाँ तक बलवान होती है उसका अभाव होना संभव नहीं है। इसलिए मुमुक्षु की भूमिका वो एक ऐसी भूमिका है कि उस भूमिका में प्रकृति के रस मंद पड़ जाते हैं या कम हो जाता है। उतना काम नहीं करे तो मुमुक्षुता नहीं है, ये साफ बात है। उतना काम मुमुक्षुता में और दूसरा कि ये वितराग विज्ञान है, वितरागी ज्ञान है। कषाय को अभाव करने का रामबाण इलाज है, अमोघ शस्त्र है। ऐसा उपाय मिलने पर भी अगर तेरा परिणाम में फर्क नहीं पड़ता है, अब तो कोई तेरा परिणाम बदलने के लिए कोई जगत में उपाय है कोई साधन नहीं, ये बात हो गया। ऐसा विचार करना चाहिए। इसलिए मुमुक्षों के बारे में कि तथापि उन वचनों का ऐसा परमार्थ नहीं है कि ज्ञान होने से पहले वे कषाय मंद न पड़े या कम न हो। यद्यपि उनका समूल छेदन तो ज्ञान से होता है, समूल मैंने मूल से ही, मूल से ये प्रकृति का अभाव होना वो तो ज्ञान का सामर्थ्य है। सम्यक ज्ञान हुए बिना मूल से वो जाने वाली नहीं, ये बात सही है। परंतु जब तक कषाय आदि की मंदता या न्यूनता न हो तब तक ज्ञान प्राय उत्पन्न ही नहीं होता। ज्ञान उत्पन्न कहाँ से होगा? इसकी कोई भूमिका है या सीधा ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है नींद में? ऐसा नहीं, पूर्व भूमिका अवश्य होती है और इस पूर्व भूमिका में बहुत से पहलू हैं। उस भूमिका में आए बिना, मैंने इस क्रम में आए बिना, नियत क्रम है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सम्यक दर्शन से है, सम्यक दर्शन के पहले मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं है। तो मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के पहले भी कोई नियत क्रम है, इसका चौकस कोई क्रम है, उस क्रम में आए बिना, इस भूमिका में आए बिना कभी भी किसी जीव को ज्ञान प्राप्ति हुई हो ऐसा बनता है नहीं। इसलिए जब तक कषाय आदि की मंदता या न्यूनता न हो, ये पात्रता का विषय लिया, सिर्फ कषाय की मंदता नहीं ली लेकिन पात्रता का विषय लिया है, तब तक ज्ञान प्राय उत्पन्न ही नहीं होता, बिना पात्रता ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान प्राप्त होने में विचार मुख्य साधन है, ज्ञान की प्राप्ति में विचार विवेक, हित अहित का विचार मैंने यहाँ हित अहित का विचार, ये मुख्य साधन है। और उस विचार के वैराग्य मैंने भोग के प्रति अनासक्ति या मंद रस, तथा उपशम मैंने कषाय आदि की बहुत ही मंदता, उनके प्रति विशेष खेद, ये दो मुख्य आधार है। क्या कहा, विवेक है, विचार विवेक है, उसमें वैराग्य और उपशम, ये दो आधार से विचार विवेक चलता है, जिसको परिणाम में वैराग्य उपशम नहीं हुए उसको विचार है ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। संक्षिप्त में बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है यहाँ पर, बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है कि तुम विचार करते हो मुमुक्षु के लिए ये बहुत अच्छी बात है, कि तुम शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र सुनते हो, और तेरे परिणाम में वैराग्य उपशम नहीं है, भोग उपभोग के काल में तीव्र परिणाम से चला जाता है, बह जाता है, और कषाय की ममता भी तुझे नहीं है, क्या बात, तेरा विचार क्षोभम हो तो चलेगा लेकिन ये ऊंधा चलेगा, सीधा चलेगा, ऐसी बात। इसलिए वैराग्य और उपशम, ये दोनों आधार से जो विचार है वो सही विचार है, अगर विचार को ये दो आधार नहीं है तो ये विचार नहीं है, शायद अविचार है, ऐसा लेना चाहिए। देखिए मुमुक्षु के साथ ही लाइन कैसे लिया है, ऐसा साथ साथ विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि हम हमेशा शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, हम पढ़ते हैं, तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं, चर्चा आदि करते हैं, सुनते हैं, वैराग उपशम साथ साथ होना ही चाहिए। ये
दोनों
इसका जवाब आ गया भाई, ये कितु ने कि तो चारित्र मा जाए से ये तो बधु चारित्र मा जाए से, એટલે એમ કરીને એ દરવાજો બંધ કરી દેજો, એ રાસ્તા બંધ કરી દે, વૈરાગ ઉપશમ વાળા રાસ્તા બંધ કરી દેયા, પર ક્ષોભશમ મેં તો ધારણા શક્તિ હૈ, તો બહુ બાત નહીં નહીં સમજ મેં આતી હૈ, સુનને મેં આતી હૈ, ધારણા હો જાતી હૈ, તો ક્યા હોતા હૈ, હમ ભી સમજતે હૈ, મેં સમજતા હું, મુજે જ્ઞાન હૈ, બસ મર ગયા વો, અભી વો मर गया, अभी जिंदा होने का कोई सवाल नहीं है, ऐसी बात। ऐसा जानकर उसका निरंतर लक्ष्य रखकर वैसी परिणति करना योग्य है, ऐसा जानकर उसका निरंतर लक्ष्य रखकर, जानकर और उसका ध्यान रखकर ऐसी परिणति करना योग्य है, ये सहज हो जाना चाहिए, तो वैराग उपशम तो सहज हो जाना चाहिए, परिणति हो जानी चाहिए उसकी, तो मुमुक्षु को क्या, इसको सहज कहते हैं, कोई कहते हैं देखो, किसी को ऐसा लगता है कि ये श्रीमद जी ऐसा कहते थे, गुरुदेव क्या ऐसा कहते थे, ऐसा बात लेते हैं। एक प्रसंग याद आता है, व्याख्यान का समय करीब करीब था, हो चुका था या चालू हो गया था, दो पाँच मिनट आगे पीछे की बात है, बहुत साल हो गया। किसी मुमुक्षु भाई बैठे थे, वृद्ध आदमी थे, कोई दूसरा मुमुक्षु इसके पास में आके बैठे, जगह की कमी थी थोड़ी। उस वक्त स्वाध्याय हॉल में प्रवचन होता था गुरुदेव का, तो वहाँ तो संख्या थोड़ी बढ़ जावे तो जगह कम पड़ती है, तो उसको जरा तकलीफ महसूस हुई। ये मेरे पास ना बैठा तो मुझे वो लगता है कोई इसका पैर पर कोई दबाव आया हो, कुछ भी हुआ होगा, बहुत गर्म हो गया। क्या हुआ? बहुत गर्म हो गया, उतना क्रोध आ गया कि गुरुदेव विराजमान है वो भूल गया। जरा जोर से उसके साथ वो क्रोध कर दिया, लड़ने लग गया, गुरुदेव का ध्यान दिया। ऐसा बगल में साइड में बैठे, सामने नहीं थे, साइड में बैठे, जो बैठे हैं उनके पास दूसरा मुमुक्षु आकर के बैठा, उसको गिरदी हो गई, तो गिरदी के हिसाब से उसको क्रोध हो गया। गुरुदेव का ध्यान दिया तो उसको भी पता चला कि गुरुदेव का जरा ध्यान हुआ है, ध्यान गया है, तो भी शांत हो गया। गुरुदेव एक वाक्य बोले, मार्मिक लेकिन एक वाक्य बोले, मुमुक्षु को ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोले? मुमुक्षु को, मुमुक्षु के योग्य नहीं है ऐसा होना, मुमुक्षु के योग्य। मैंने क्या हुआ, कोई जगह की कमी हो गई तो क्या हो गया इसमें कि ऐसा होना, घंटा भर में क्या हो जाना वाले हैं, अभी दूसरे दूसरे गति में क्या सुविधा मिलती है, तीन इंच गति में, नरक गति में कोई सुविधा मिलती है, नहीं मिलती है। थोड़ा भी तकलीफ हो गए और कसाई तीव्र हो जा रहे हैं। मुमुक्षु को ऐसा नहीं होना चाहिए, मुमुक्षु को ये ठीक नहीं करना। इतना मार्मिक रूप से बात बोले, इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई महापुरुष के अनुयायी कहलाते हैं, महापुरुष के हम कुछ अनुयायी हैं, तो हमारी प्रवृत्ति की कुछ मर्यादा होती है, उस मर्यादा के बाहर जा करके हमें प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। निरर्गल प्रवृत्ति कोई ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिसमें मुमुक्षुता नहीं दिखे अगले को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब गुरुदेव भी कहते थे, नहीं कहते थे सो बात नहीं है, पात्रता के बारे में भी बहुत कहते थे। तो ऐसा जानकर निरंतर इसका लक्ष्य रखना चाहिए वैराग्योक्षम का, और ऐसी सहज परिणति हो जानी चाहिए। सत्पुरुष के वचन के यथार्थ ग्रहण के बिना प्राय विचार का उद्भव नहीं होता, और सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण तभी होता है जब सत्पुरुष की अनन्य आश्रय भक्ति परिणत होती है, क्योंकि सत्पुरुष की प्रतीति ही कल्याण होने में सर्वोत्तम निमित्त है। एक बहुत बहुत बड़ी बात की है इस जगह पे कि शास्त्र वाचने से, पढ़ने से तत्व का विचार हो गया, हम तत्व ज्ञान का विचार करते हैं, हम आत्मा का विचार करते हैं, ऐसा मान लेना चाहिए नहीं, ऐसा कहते हैं। कैसे होते हैं कि सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण के बिना विचार का उद्भव नहीं होता, आत्महित का विचार, आत्महित का विचार को विवेक जिसको कहते हैं, विवेक विचार जिसको कहते हैं, वो कब होता है कि सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण होवे, तब ग्रहण होवे नहीं, यथार्थ ग्रहण होवे तब। और सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण कब होता है कि जब सत्पुरुष की अनन्य आश्रय भक्ति परिणत होती है, तब। इस बात क्या लेंगे, थोड़ा विचार तो आया था, पैराग्राफ नहीं पढ़ा था कि इधर वैराग उपशम लिया और सत्पुरुष की भक्ति का बात क्यों नहीं लिया, ये पढ़ा तब ये विकल्प हो गया था। पत्र पढ़ के नहीं आए तो देखा नहीं कि ये बात तो नीचे ही रखी है, वो तो सेपरेट रखी है। वैराग उपशम से साथ में वो बात मिला नहीं दी, उसको अलग स्थान दिया है, सत्पुरुष की भक्ति के विषय में अलग स्थान दिया है। मैंने सत्पुरुष के प्रति बहुमान होना, वो सत्पुरुष की भक्ति है। वो भक्ति मैंने यहाँ कोई पद गाना वो भक्ति नहीं, बहुमान होना उसके गुणों के प्रति, उनकी दशा के प्रति बहुमान होना। और बहुमान होने में क्या होना, भाव क्या है कि ऐसा सत्पुरुष का सानिध्य मुझे मिले, ऐसे सत्पुरुष के चरण में मुझे कोई जगह मिल जाए, ऐसा इस प्रकार से ये बहुमान आता है। ऐसी भक्ति को आश्रय भक्ति कहने में आई है। तो भक्ति के बहुत प्रकार लेते हैं, भोग भक्ति, रहस्य भक्ति, आश्रय भक्ति, ऐसे ऐसे विशेषण लेते हैं, अलग अलग विशेषण लेते हैं। भक्ति मैंने बहुमान, लेकिन ओक संज्ञा से वो करते हैं, चलो गुरुदेव को बहुत मानते हैं, बहुत प्रतिभा संपन्न है, अपने भी मानो, ऐसी बात नहीं। पहचान करके, उनकी दशा की पहचान करके, जो आत्मगुण प्रकट किया है उसकी पहचान करके बहुमान होना चाहिए, और उसका आश्रय का भाव रहना चाहिए कि ऐसा सद्गुरु का, ऐसा सत्पुरुष का मुझे सानिध्य मिले, मुझे सत्संग मिले, उसके चरण में मैं निवास करके मेरा आत्महित में साधु हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए, उसको आश्रय भक्ति कहने में आता है। तो जब सत्पुरुष की अनन्य आश्रय भक्ति परिणत होती है, तब ही उसका वचन का यथार्थ ग्रहण होता है। जब इसके वचन का यथार्थ ग्रहण होता है, तब ही इस वचन की असर आत्मा पर आती है, उसको विचार विवेक कहने में आता है। घना गंभीर भाव भी रहता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बता करे छे कि चलो रोज उठीने आपणे जाओ मंदिर में, स्वाध्यायमां आपणे पांचन करो, आपणी रूढ़ि छे, आपणी रूढ़ि थई गई छे गुरुदेवना समक्ष। नहीं, एवुं नहीं। सत्पुरुषने आश्रय भक्ति पूर्वक एना वचनोनुं ग्रहण करवानी पद्धति होवी जोईए। विरोधनो तो प्रश्न ज नथी, अवकाश ज नथी, ए तो बहु दूर छे। પછી અમુક સત્પુરુષ ને અમુક સત્પુરુષ નો સવાલ નથી એની અંદર, શું આપણે તો પ્રસંગ છે ને આવતીકાલે, તો એક સત્પુરુષ નો મહિમા નો પ્રસંગ છે કે આવા સત્પુરુષ હો, આવા સત્પુરુષ ની વિધિ માનતા હો, ભલે અત્યારે નથી તો એની વિધિ માનતા હો, અને એની વિધિ માનતામાં એના ચરણમાં મારી વિધિ માનતા હો, એનું નામ બહુમાન છે, એની ઈચ્છે છે। બારમાં શું ઈચ્છે છે કે મને આટલો પરિવાર હો, મને આટલા અનુકૂળ સંયોગ હો, તો આત્મામાં કંઈ થોડા આવે છે, પરિવાર કંઈ આત્મામાં આવી જાય છે, સંયોગો કંઈ, મકાન કંઈ આત્મામાં આવી જાય છે, કે એનામાં આત્મા ચાલ્યો જાય છે કે નહીં, એને હો આ હો આ હો, એના અસ્તિત્વને એ ચાહે છે, પોતાની સમીપ એનું અસ્તિત્વ ચાહે છે। સત્પુરુષની સમીપ અસ્તિત્વ ચાહે છે, તારી સમીપ સત્પુરુષ હો, તું સત્પુરુષની સમીપ હો, આવો પ્રકારનો કોઈ ફેરફાર થયો કે અનાદિથી જે છે એ ચાહે છે, તો કે આ હો મને, આ હો મને, આ હો મને, આ હો, આ લાઈન અહીંથી ફરે છે। સંયોગનો ફેરફાર, જગતના અનુકૂળતાના સંયોગોના બદલે સત્પુરુષનો સંયોગ હો, એવી આશ્રય ભક્તિ આવ્યા વિના સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ થાય નહીં, યથાર્થ એમાં વિચાર શક્તિની ઉત્પત્તિ થાય નહીં। દાસ દાસ હું દાસ છું, સ્નેહ પ્રભુનો ત્રણ વખત કરી રસ આવ્યો એટલે સત્પુરુષની ભક્તિનું પ્રકરણ શ્રીમદજીના શબ્દોમાં બહુ અસાધારણ રીતે બહાર આવ્યું છે. પ્રાય તો સત્પુરુષ ભક્તિ કે લીએ ઇતના કહેતે નહીં હૈ ક્યોંકિ જીવ કો વિપરીત અસર હોતી હૈ કે યે અપની ભક્તિ સિખાતે હૈ અપની ભક્તિ કરાને કે લીએ બોલતે હૈ ઇસલીએ બહુત સે સત્પુરુષ તો એસી બાત નહીં કરતે લેકિન કભી કભી કોઈ સત્પુરુષ કરતે હૈ તો બહુત ભી કરતે હૈ या दूसरे सत्पुरुष के लिए भी कभी करते हैं तो बहुत करते हैं, अपने लिए नहीं करे तो दूसरे के लिए कहे. जैसे गुरुदेव ने बैल सिंह के लिए कहा एक साथ दो हो गए तो कह रहे, तो ऐसे दूसरे सत्पुरुष की प्रशंसा करने में यही कारण है कि मुमुक्षु जीव आश्रय भक्ति में आ सके. अगर आश्रय भक्ति में आएगा तो इसका वचन का यथार्थ ग्रहण होगा और ग्रहण होने के बाद यथार्थ विचार शक्ति काम में आएगी, वरना विचार शक्ति अयथार्थ रूप में काम करेगी, यथार्थ रूप में काम नहीं करेगी. ये बात हो जाएगी. भक्ति करे जब ज्ञानी होकर भी होकर के भी इतनी भक्ति करते हैं तो मुमुक्षु को कितनी करनी चाहिए, ये यहाँ से निकलता है कि उसको तो एक विकल्प भी दूसरा उठना चाहिए. नहीं, भक्ति के विरुद्ध तो एक विकल्प भी उसको उठना चाहिए. नहीं, ये बात हो जाती है. क्योंकि सत्पुरुष की प्रतीति ही कल्याण होने में सर्वोत्तम निमित्त है. प्रतीति मैंने पहचान से विश्वास आना, उसको प्रतीति कहते हैं कि ये सत्पुरुष ही है और मेरे आत्मकल्याण में ये सर्वोत्तम निमित्त है. प्रत्यक्ष योग, ये सुनील भाई का चिट्ठी आया है, चिट्ठी भाई इधर आते हैं ना बॉम्बे से, पिता का चिट्ठी आया है तो उसने दो तीन बात लिखी है. उसमें एक बात लिखी है, अच्छी बात लिखी है, मुझे भाई को पढ़ने को दिया था वो बात लिखी है कि आपके यहाँ सुगानी जी का चित्र का अनावरण विधि है तो इस विषय में लिखे हैं कि पूज्य श्री सोगानी जी नु तेल चित्र मुमुक्षु समाज ने पुरुषार्थ ने प्रेरणा अर्थे घना ज उपकारी बनशे. तेमज आ वात के श्रीमदजी ए कही लखी छे, तेमज ज्ञानी पुरुष ना प्रत्यक्ष योग नो लाभ शू छे ते बाबत मुमुक्षु समाज नो प्रधानपणे ध्यान खेंचशे. आ चित्र शू ध्यान खेंचशे के એમને પાત્રતા ઘણી હતી, મૂળ દિગંબર હતા, દિગંબરના શાસ્ત્રો વાંચ્યા હતા, પંડિતો રાખીને શીખ્યા હતા, છ છ કલાક પૂજા કરતા હતા, પાંચ પાંચ કલાક ધ્યાન કરતા હતા, જ્ઞાન ધ્યાન પૂજા ભક્તિ બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ કરતા હતા, આત્મપ્રાપ્તિ નહોતી થતી. સત્પુરુષનો યોગ થયો, પોતે સત્પુરુષ થઈ ગયા. પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો યોગ થયો અને પોતે સત્પુરુષ થઈ ગયા. આ એ ધ્યાન ખેંચશે એમ કે યોગ શું ચીજ છે, પ્રત્યક્ષ યોગનું મહત્વ શું છે, એ આ એક પ્રસંગ ધ્યાન ખેંચવાનો છે. તેમજ ગુરુ ભક્તિથી ઓતપ્રોત એમની ગુરુ ભક્તિ પણ વિશેષ છે. અનંત તીર્થંકર સે ભી અધિક હૈ, ગુરુદેવ મેરે લીએ અનંત તીર્થંકર સે ભી અધિક હૈ. ગુરુ ભક્તિથી ઓતપ્રોત તેમજ ગુરુ આજ્ઞામાં અવિરતપણે વર્તનારા એવા પવિત્ર શ્રી સુગાનીજીના તૈલચિત્રથી આવી ઘણી ઘણી પ્રેરણાઓ લેવાનું બનશે એમ કરીને એને પોતાની શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી શકે. શું કહે છે કે ક્યોંકિ સત્પુરુષ કી પ્રતીતિ હિ કલ્યાણ હોને મે સર્વોત્તમ નિમિત્ત હે, એ વાક્ય આપણે લખ્યું છે એમના પોતાની નીચે કે હે ગુરુદેવ, આપકી વાણી કા સ્પર્શ હોતે હિ માનો વિશ્વ કી ઉત્તમો ઉત્તમ વસ્તુ કી પ્રાપ્તિ હો ગઈ. તો વિશ્વ કી ઉત્તમો ઉત્તમ વસ્તુ કઈ હૈ, वो कौन सी है कि मेरा परमात्मा, मेरा जो परमात्मा पद है, परमात्मा स्वरूप है, विश्व की उत्तम उत्तम वस्तु है, बस आपकी वाणी का स्पर्श होते ही मुझे तो प्राप्त हो गया. तो वो बात उनके अनुभव की पत्र में जो लिखी है वो अपने खुद के शब्द में लिखी है, वो क्या ऊपर लिखा है. प्राय ये कारण परस्पर अन्यो अन्य आश्रय जैसे ही है, कहीं किसी की मुख्यता है और कहीं किसी की. अन्यो अन्य आश्रय मैंने क्या, कि सत्पुरुष की भक्ति से उसका ग्रहण होता है और उसका ग्रहण करने पर सत्पुरुष की भक्ति पैदा हो जाती है. वो सत्पुरुष ऐसी बात करते हैं मेरे आत्म कल्याण की, ज्ञान में क्षोभम अच्छा होवे, थोड़ी निर्मलता होवे तो भक्ति बढ़ जाती है. तो वो मेरे लिए कितना अच्छा बात किया, मेरे आत्मकल्याण की कितनी सुंदर बात किया. तो कभी भक्ति से यथार्थ ग्रहण होता है, कभी यथार्थ ग्रहण करने पर भक्ति पैदा हो जाती है. ऐसा तो पाप प्राय ये कारण परस्पर अन्य अन्य जैसे हैं. अन्य अन्य मैंने यथार्थ विचार के साथ ग्रहण करना भक्ति वश, तो भक्ति की प्राप्ति और भक्ति की प्राप्ति से यथार्थ विचार और ग्रहण करना हो, ऐसा दोनों. तो कहीं किसी की मुख्यता है और किसी को पहले भक्ति होती है बाद में ग्रहण होता है, किसी को पहले ग्रहण होते ही भक्ति बाद में उत्पन्न हो जाती है, और कहीं किसी की मुख्यता है. तथापि ऐसा तो अनुभव में आता है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुष की आश्रय भक्ति अहमभाव आदि के छेदने के लिए और अल्पकाल में विचार दशा परिणमित होने के लिए उत्कृष्ट कारण रूप होती है. देखिए क्या बात कहते हैं, कि सूक्ष्म लेकर के तो मनुष्य आया ही है. तो सच्चा मुमुक्षु हो तो उसे आश्रय भक्ति होने से फिर वो संयमवादी का परिणाम करेगा, सूक्ष्म बढ़ेगा, कहीं अहम भाव नहीं होगा. जो संयम होने के साथ अहम भाव होता है, दूसरे दानादि के परिणाम के साथ अहम भाव होता है, वो सत्पुरुष की आश्रय भक्ति के साथ ऐसा परिणाम होवे तो अहम भाव नहीं होवे. सत्पुरुष उसको बोलेगा, देख तेरा परिणाम ये मंद कसाई का है, साथ अहम भाव नहीं होना चाहिए, तेरा जागृत रह जाना, अंतर अवलोकन से जागृति में रहना, कि किसी भी प्रकार के धार्मिक विषयक परिणाम होते साथ उस परिणाम का अहम भाव पैदा नहीं होगा, उसकी जागृति रख लेना. तो ये आश्रय भक्ति में ऐसा फायदा होता है और अल्प काल में विचार दशा भी परिणमित हो जाती है, विवेक बहुत जागृत होता है और वो जीव सत्पुरुष के आश्रय से आत्म कल्याण को प्राप्त करता है.
देव